स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 19 अप्रैल दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जज लोया की मौत की जांच को लेकर दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट के फैसले पर जताई निराशा।
सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि भाई एक स्वतंत्र जांच हो जाए, जब इतने सारे संदेह उत्पन्न हो गए थे, उस पर पर्दा डालने का काम किया है।
सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंदन में दिए बयान की पाकिस्तान ने की तीखी आलोचना। सुनिएगा बाड़मेर के उस गांव से बीबीसी की पड़ताल, जहां दो लड़कियों और एक लड़के का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था।
देखा नहीं आपका क्या हुआ क्या नहीं, कराम उठाए ले गया आपने, गया आपको ध्यान नहीं है मेरे, पूरा जबरदस्ती ले गया।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल जज ब्रजगोपाल हरकिशन लोया की मौत की एसआईटी से जांच करवाने की मांग को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में तीन जजों की बेंच ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों और न्यायिक अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि जज लोया की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे जज बी एच लोया की मौत 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में हुई थी। वो वहां एक शादी में शामिल होने गए थे। बाद में जज लोया की मौत की परिस्थितियों की जांच के लिए बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने मुंबई हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पुनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने आज औपचारिक तौर पर लंदन में हो रही राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का उद्घाटन किया। महारानी एलिजाबेथ इसी शनिवार को 92 साल की हो जाएंगी और वो अपने उत्तरदायित्व अपनी अगली पीढ़ी को सौंप रही हैं। और माना जा रहा है कि वो आखिरी बार 53 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के प्रमुखों की इस बैठक का नेतृत्व कर रही हैं। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल में शामिल देशों के विकास पर वो गर्व महसूस करती हैं और उम्मीद करती हैं कि आने वाले वक्त में प्रिंस चार्ल्स इसका नेतृत्व करेंगे।
When I meet the young leaders of this century, I remember my own lifelong commitment.
जब मैं इस सदी के युवा नेताओं से मुलाकात करती हूं, तो मुझे 1947 में दक्षिण अफ्रीका में किए गए अपने वादे की याद आ जाती है। उस वक्त मैं 21 साल की थी। मेरा अगला जन्मदिन आ रहा है और मैं आपके साथ तय किए गए अपने अभूतपूर्व सफर को याद कर रही हूं। मुझे खुशी है कि हमने साथ मिलकर काफ़ी कुछ किया है। लगातार तरक्की करते राष्ट्रमंडल देशों के इस नेटवर्क के प्रमुख के तौर पर आपकी सेवा करने में मुझे आनंद और गर्व की अनुभूति हो रही है। मुझे उम्मीद है कि यह नेटवर्क ऐसे ही सफलता की सीढ़ी चढ़ता रहेगा और वक्त के साथ प्रिंस ऑफ वेल्स मेरे पिता के द्वारा शुरू किए गए इस महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाएंगे। ये थे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बीते सप्ताह 10,000 नर्सों को नौकरी से बर्खास्त करने के बाद जिम्बाब्वे सरकार ने फिर से नर्सों की भर्तियां करनी शुरू कर दी हैं। सरकार का कहना है कि जिन नर्सों को बर्खास्त किया गया था, वो फिर से नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। बीते सप्ताह सोमवार को वेतन में सुधार की मांग को लेकर नर्सों ने हड़ताल की थी। जिम्बाब्वे नर्स एसोसिएशन के महासचिव इनोक डोंगो ने बीबीसी को बताया,
They are trying their best to recover the economy. Yes, that one we understand.
सरकार अर्थव्यवस्था को फिर से दुरुस्त करने के लिए कोशिशें कर रही हैं और ये बात हम समझते हैं, लेकिन नर्सों को मिलने वाली तनख्वाह में सुधार होना चाहिए, इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री इस बात से सहमत थे कि नर्सों के मुद्दे असल में गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन जब हमने सुना कि नर्सों को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो हमें आश्चर्य हुआ। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बारे में विचार करेगी और मौजूदा तनाव की स्थिति को खत्म करने के लिए नर्सों से बात करेगी। जिम्बाब्वे नर्स एसोसिएशन के महासचिव इनोक डोंगो के शब्द। इराक ने कहा है कि उसकी सेना ने पड़ोसी सीरिया में कथित इस्लामिक चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इराकी सेना के प्रवक्ता ने बताया है कि ये हमले सीरियाई सरकार के साथ मिलकर किए गए हैं। इराक और सीरिया में अब भी कई इलाकों पर इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों का नियंत्रण है। हालांकि बीते कुछ वक्त में इस्लामिक स्टेट पर हमले तेज हुए हैं और ये समूह अब इराक से सटे सीरिया के कुछ इलाकों तक ही सीमित हो गया है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जज ब्रजगोपाल हरकिशन लोया की मौत की जांच करवाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कुछ समय पहले एक मैगजीन में छपे लेख में जज लोया की मौत पर सवाल उठाए गए थे और तभी से मामले की जांच की मांग की जा रही थी। जज लोया सुहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। उसी दौरान 1 दिसंबर 2014 को जब वो एक शादी समारोह में शामिल होने नागपुर गए हुए थे तो वहीं उनकी मौत हो गई थी। उस वक्त उनकी मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना बताई गई थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने जज लोया की मौत पर संदेह जाहिर करते हुए इसकी SIT जाँच कराने की मांग की थी। कोर्ट के फैसले को उन्होंने बेहद निराशाजनक बताया है। सुनिए विनीत खरे की रिपोर्ट।
दिसंबर 2014 में 48 साल के जस्टिस BH लोया की नागपुर में मौत हो गई थी। उस वक्त जज लोया CBI कोर्ट के जज थे और सुहराबुद्दीन फेक इनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे थे। गुजरात के उस वक्त के गृह राज्य मंत्री अमित शाह मामले में अभियुक्त थे। जज लोया की मौत के बाद CBI अदालत के अगले जज ने अमित शाह को सबूतों के अभाव में डिस्चार्ज कर दिया था। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक जज लोया की मौत दिल के दौरे से हुई, लेकिन कुछ महीने पहले कैरवा मैगजीन में एक कहानी छपी जिसमें जज लोया के परिवार ने मौत की परिस्थितियों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, आखिरी घंटों में मौजूद लोगों की उपस्थिति आदि पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा जज लोया को घूस देने की कोशिश की गई थी और परिवार की जान को खतरा है। महाराष्ट्र सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया था और इसे राजनीति से प्रेरित बताया था। याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला और बंधुराज लोन ने सुप्रीम कोर्ट से अदालत के निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। याद रहे कि जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज जब मीडिया के सामने आए थे और कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, उस वक्त भी कारण जज लोया से जुड़ी याचिका को सुनने वाली बेंच से जुड़ा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने बेहद कड़े शब्दों में याचिकाओं को हल्का और प्रायोजित बताया और कहा कि याचिकाकर्ताओं की कोशिश न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाना था। अदालत ने कहा कि राजनीतिक विरोध को अदालत के बाहर सुलझाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के वकील निशांत काटनेश्वरकर,
कोर्ट ने यह भी कहा है क्योंकि कुछ लॉयर्स ने ये कहा था कि यहां के जजेस ने सुनना नहीं चाहिए ये पिटीशन। दूसरी बात ये थी कि जो हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है उनके खिलाफ भी किसी ने कहा था कि कंटेम्प्ट इशू किया जाए। किसी ने आगे बढ़ के ये भी कहा था कि जो जजेस साथ में थे उनको क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, कंक्लूजन ऐसा निकाला है कि कहीं ना कहीं जुडिशरी को बदनाम करने की भी कोशिश की गई है।
याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला ने BBC से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई।
नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सराकों पर उसको तो मानना पड़ेगा, दिल टूट गया ये सुनकर, लेकिन अब क्या करें।
स्ट्रॉन्ग फ्रिवोलस एंड मोटिवेटेड पिटीशंस शुड बी डिस्करेज, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं तहसीन।
सवाल जो कोर्ट में हुआ वो नहीं है, सवाल है कि जो वहां पर जो हमने तथ्य रखा है और जो प्रशांत भूषण ने तथ्य रखा है, जो दुष्यंत दवे जी ने तथ्य रखा है, जो इंदिरा जयसिंह जी ने तथ्य रखा है माननीय जजों के सामने, उस पर क्या टिप्पणी हुए उस पर बात करें।
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसे अदालत के लिए काला दिन बताया।
सुप्रीम कोर्ट के लिए मेरी राय में एक काला दिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बजाय इसके कि भाई एक स्वतंत्र जांच हो जाए, जब इतने सारे संदेह उत्पन्न हो गए थे, उस पर पर्दा डालने का काम किया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीति भी गर्मा गई। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि याचिकाओं का मकसद अमित शाह को निशाना बनाना और कांग्रेस को फायदा पहुंचाना था।
किसी प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कोई कलंक आए, इसके लिए केस फाइल किया गया था। और ऐसा आज तक मैंने नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के कंट्रोल में है।
उधर कांग्रेस ने फैसले को भारत के इतिहास में दुखी दिन करार दिया और कहा कि भारत के लोगों को कई सवालों के जवाबों का इंतजार है। याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि वो पहले आदेश को पढ़ेंगे और आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर लंदन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लंदन में भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने जता दिया था कि वो अब बदल गया है और चरमपंथ के निर्यातकों को जवाब देना जानता है। हालांकि पाकिस्तान सितंबर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के दावे को हमेशा से नकारता रहा है और कहता रहा है कि वो नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी से ज्यादा कुछ नहीं था। अब प्रधानमंत्री मोदी के ताज़ा बयान पर पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के धमकी भरे बयान से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंतित होना चाहिए। पाकिस्तान की पूरी प्रतिक्रिया जानने के लिए मैंने बात की इस्लामाबाद में हमारी सहयोगी शुमाइला जाफरी से।
पाकिस्तान में जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल, आज उनसे ये सवाल किया गया था उनकी वीकली ब्रीफिंग में, और उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान जो है वो इन आरोपों को और इन क्लेम्स को इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल रिजेक्ट करता है कैटेगोरिकली, और उन्होंने इन क्लेम्स को फासिकल एलिगेशन करार दिया, यानी कि बेबुनियाद इल्जाम करार दिया, और ये भी कहा कि ये इंडिया की जो इमेजिनेशन है उसका एक टुकड़ा या फ्रेगमेंट था, और उनका ये भी कहना था कि सिर्फ दावे करने से कोई बात हकीकत नहीं बन जाती। डॉक्टर फैसल ने जो रिएक्शन दिया पाकिस्तान का इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट में, उसमें ये भी कहा कि जो इंडिया है इट्स साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, कि बार बार वो एक इल्जाम लगा रहा है और एक बात कह रहा है जिसकी कोई हकीकत नहीं है, और असल में इंडिया का मकसद सब कुछ जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में सख्त हो रहा है उससे अटेंशन को डाइवर्ट करना है, जहाँ पे रेप को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करना चाह रहा है, और इस रेप के मुद्दे पर पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस क्रिटिसिज्म को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स देकर।
शुमाइला, अगर मीडिया की बात करें तो वहाँ की मीडिया ने भारतीय प्रधानमंत्री के बयान पर क्या कुछ लिखा है?
देखिए, जो एक पाकिस्तान की पोजीशन है वो हमेशा यही रही है कि पाकिस्तान ये कहता है कि ऐसे कोई जो है वो स्ट्राइक्स नहीं हुए हैं, तो बहुत ज्यादा तो जगह नहीं दी गई है, लेकिन जो है इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया है, कुछ मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया है, लेकिन जो अभी बात देखने में आई वो ये कि आज कितनी बड़ी फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग हुई थी, लेकिन थोड़ी देर पहले तक जो उसकी रिपोर्टिंग की जा रही है, अपेरेंटली जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के रिएक्शन को बहुत जगह दी है, और जो सब मेन चैनल्स हैं वो बहुत हाईलाइट करके चला रहे हैं पाकिस्तान के जवाब को। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है उसको उस तरह से कवरेज नहीं मिली जिस तरह के पाकिस्तान के जवाब को इस मुद्दे पर कवरेज दी जा रही।
पाकिस्तान की मीडिया में भारतीय प्रधानमंत्री के बयान से ज्यादा पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की चर्चा, जानकारी दे रही थी शुमाइला जाफरी। आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के नए विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली कल बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करने के बाद आज सिचुआन पहुंच रहे हैं। नेपाली विदेश मंत्री 21 अप्रैल तक चीन में रहेंगे। चीन और नेपाल के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के बीच रेल संपर्क बेहतर बनाने पर बात हुई। बैठक के बाद चीन ने वन बेल्ट वन रोड परियोजना, जिसे न्यू सिल्क रूट कहा जा रहा है, उसके तहत भारत नेपाल चीन आर्थिक गलियारे का प्रस्ताव देकर एक बार फिर इस बात के संकेत दिए हैं कि वो भारत को इसमें शामिल करना चाहता है। नेपाल के साथ कारोबारी रिश्ते मजबूत करने के साथ साथ भारत के साथ सहयोग का संदेश देना कितना अहम है, यही जानने के लिए हमारी सहयोगी मानसी दास ने बात की बीजिंग में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता से।
चीन ये चाहती है कि भारत भी जुड़ जाए इसको चीन एक बड़ा महायज्ञ समझती है बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम, और इसमें अगर कोई कमी है तो वो ये है कि सारे दुनिया से वो जो कनेक्ट करना चाहती है वो अपने से कनेक्ट कर रही है, अपने आप को सेंटर बना के, तो जाहिर है वो पैसा डाल रही है तो अपने आप को सेंटर बनाएगी। तो अब चीन नेपाल भारत तीन के बीच में वांगी ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि तीनों में एक साथ जुड़ जाए।
लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि भारत अभी तक वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा नहीं बना है।
भारत तो इनकार कर ही रही है, लेकिन गत वर्ष में चीन ने सारी दुनिया को बुलाया था बेल्ट एंड रोड के फोरम में, और भारत एकमात्र बड़ा देश था जो नहीं गया, मोदी साहब नहीं गए। उसके बाद भारत ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया कि जो जो देश इसमें जुड़ते हैं वो उधारी में फंस जाते हैं, मतलब खुल के भारत ने इसका विरोध किया है। और भारत के विरोध के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि चीन ने जो बेल्ट एंड रोड बनाया है उसका नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो जो सड़क निकली है चाइना से वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाती है, लेकिन वो जैसे ही चीन से निकलती है पहले कदम पर वो कश्मीर में जा गिरती है और किलजित बलिस्तान का जो एरिया है इसको भारत अपना टेरिटरी मानती है। मतलब मिला जुला के भारत की जो क्लेम है उसको चीन रिजेक्ट करती है और पाकिस्तान का जो कहना है कि वो उनकी जगह है उसको एक्सेप्ट करती है। इस तरह से भारत को लगता है तो हमसे पूरी दुश्मनी है, हम कैसे जुड़ जाए।
भारत पहले ही वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा बनने से इनकार कर चुका है और चीन ने भारत के जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और पाकिस्तान नेपाल सबके साथ जो है समझौते किए हैं, या श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट की बात मैं कर रही हूँ, तो ऐसे में अब बीजिंग से इस तरह का संदेश देना क्या भारत पर प्रभाव डालने की कोशिश है?
दबाव डालने की कोशिश इसलिए है कि आप देखिए न श्रीलंका के पास पैसा है, न पाकिस्तान, न नेपाल, न म्यांमार, न मालदीव, किसी के पास पैसा नहीं कि चीन के इन प्रोजेक्टों का पैसा दे। यहाँ तक कि नेपाल का तो पूरा जीडीपी चला जाए तो भी एक प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। चीन इतना घाटा उठाने को इसलिए तैयार है कि भारत पर दबाव पड़े, भारत के सर तक रोड आ जाए और भारतीय लोग सड़क का इस्तेमाल करने लगे। तो यही तो चीन चाहती है और टन हजारों टन की संख्या में माल आएगा चीन से, नेपाल के लोग उसे खरीद नहीं पाएंगे, वो नेपाल बॉर्डर से स्मगल हो जाएगा। तो बड़े बड़े समस्या आने वाले हैं और ये गंभीर कसमकस है भारत के लिए, फॉरेन पॉलिसी का पूरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। अगर आपने कश्मीर दे दिया तो कल को वो लोग अरुणाचल मांगेंगे और ज्यादा दबाव के मांगेंगे। तो ये सारे मुद्दे खड़े हो रहे हैं। 2019 में सरकार के सामने चुनाव भी हैं तो इसको मोदी सरकार कैसे हैंडल करेगी ये देखना है।
ये थे चीन में वरिष्ठ पत्रकार सैबल दास गुप्ता, जो बता रहे थे कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना के जरिए चीन भारत को कैसे प्रभावित करने की योजना पर काम कर रहा है।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
राजस्थान में बाड़मेर जिले के एक गांव में बीते शुक्रवार को दो नाबालिग लड़कियां और एक लड़का पेड़ से लटके पाए गए थे। स्थानीय पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या के तौर पर दर्ज किया है, लेकिन लड़कियों के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटियों की हत्या हुई है। पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए हमारे साथी प्रदीप कुमार बाड़मेर के उस गांव में पहुंचे जहां इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा है। प्रदीप कुमार की भेजी रिपोर्ट सुना रहे हैं नवीन नेगी।
देखिए नहीं आपका क्या हुआ क्या नहीं, कराम उठाए ले गया आपने, गया आपको तो ध्यान नहीं है मेरे, पूरा जबरदस्ती ले गया।
बाड़मेर से करीब 100 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे सरूपे का तला गांव की ये महिला बीते चार दिनों से रह रहकर अपनी सुध कुछ इसी तरह खो रही है। वो बार बार यही दोहराती है कि उनकी बेटियों को कोई घर से उठाकर ले गया और मार डाला, लेकिन ये दुख उनके अकेले का नहीं है, उनकी देवरानी का भी यही हाल है।
जोरी ऐसा ना मुसलमान बेसन नहीं होता ये गांव में, कोई गांव में बेसन नहीं होता, सरकार कोई ऐसा जो करे को साथ दे को।
गरीब और दलित परिवारों की इन दोनों औरतों का दर्द एक सा है। शुक्रवार को गांव के बाहर जिन दो लड़कियों के शव पेड़ से लटके मिले थे वो दोनों एक परिवार के दो भाइयों की बेटियां थीं। परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटियों की हत्या करके शव लटकाया गया है। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या के तौर पर दर्ज किया है। पुलिस के दावे के मुताबिक लड़के का एक ही साथ इन दोनों लड़कियों से अफेयर चल रहा था। सुनने में ये बात अटपटी भले ही लग रही हो, लेकिन पुलिस अब तक इसी निष्कर्ष पर पहुंची है। एक साल पहले दोनों परिवारों में इस मामले में पंचायत भी हो चुकी है। मृतक लड़की के पिता बहरा राम मेघवाल कहते हैं,
हमारी बच्चियां हैं जो बाहर निकलती है पानी भरने जाती है, इधर उधर जाती है तो उनको अश्लील हरकतें करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, तो आके हमें शिकायत देती थी, तो हमने उनको घर वालों को कह रखा था कि भाई ये बच्चे इनको आप समझाओ।
उधर मृतक लड़के के पिता भी कहते हैं कि एक साल पहले उन्होंने अपने बेटे को समझाया था कि कुछ काम धंधा शुरू करो।
लड़के की सर जानकारी ऐसे पहले शुरू में एक 12 महीना से पहले यहाँ बताया जी के बजे कही भाई लड़को अब भाई घरे घटी आए को ने।
अगर ये मामला पहले से चल रहा था तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तीनों को फंदे से लटकना पड़ा? इसके जवाब में गांव तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इलाके के डीएसपी सुरेंद्र प्रजापत बताते हैं,
पूरे गांव वाले जानते हैं, पेरेंट्स जानते हैं, मिल बैठ करके आपस में बात भी की है कि बच्चे हैं इनको एक बार नज़रअंदाज किया जाए, माफ़ किया जाए और इन पर निगाह रखी जाए, ध्यान रखा जाए। इसके बावजूद इनका प्रेम प्रसंग परवान चढ़ता रहा और उसकी प्रणति ये आप देख रहे हैं।
दरअसल बाड़मेर के भारत पाकिस्तानी सीमा से सटे गांवों में सिंधी मुसलमानों का दबदबा है। इलाके की दो तिहाई आबादी मुसलमानों की है। उनके पास काम धंधे हैं और ज़मीनें हैं। दलितों को उनके ही खेतों में काम करना पड़ता है। लिहाजा इस हादसे को हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान का रंग देने की कोशिश भी खूब हो रही है। कुछ दलितों के मुताबिक उनका गांव तो मिनी पाकिस्तान बन चुका है।
ये गांव जो है छोटा पाकिस्तान है, जिसमें बड़ी बड़ी गैंग है, झगड़े करते रहते हैं हमेशा, काले कपड़े पहन के, कभी तो कश्मीर में, कभी हैदराबाद दखन में, कभी गांव में रात का 2 बजे 2:30 बजे घूमते हैं तो लोगों को कहते हैं कि मेरे बस में नहीं है, ये कहने में नहीं, इसकी छेड़छाड़ मत करो, आप मरोगे। तो कितनी बार उसने झगड़ा किया है, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है।
इस मामले में भी आरएसएस वाले सक्रिय हुए हैं। बाड़मेर जिले के संघ के पदाधिकारी स्वरूप सिंह खारा ने परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। वे कहते हैं कि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
तो ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही है, और अगर हम बाकासर से लगाकर जैसलमेर जिले के लोंगे वाले तक गणना करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये जो दक्षिण के जितने 4-5 राज्य हैं, वहाँ की करीब 1000 युवतियाँ यहाँ सीमांत क्षेत्र में मुसलमानों के घर में हैं।
इलाके के दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वे किसी सिंधी मुसलमानों की हैसियत तक पहुँच पाएंगे। ऐसे में समय समय पर ऐसे मामलों का आना थमेगा, ये दावा भरोसे से नहीं किया जा सकता।
प्रदीप कुमार की रिपोर्ट सुना रहे थे नवीन नेगी। जिस तरह आप हमारे कार्यक्रमों को ध्यान से सुनते हैं, उसी तरह हम कैसा कार्यक्रम पेश करते हैं, ये जानने के लिए हमें इंतजार रहता है आपकी चिट्ठियों का। तो आपकी चिट्ठियां सुनने के लिए चलते हैं राजेश जोशी के पास।
नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ आज हैं
इंदु पांडे। मेरा भी
पांडे
नमस्कार।
का भी नमस्कार। जी हाँ बिल्कुल, और इंदु पांडे के सामने मैं देख रहा हूँ जो कागज रखे हुए हैं उनमें चिट्ठियां भी हैं और ईमेल भी हैं। महेंद्र सारण का नाम मैं देख पा रहा हूँ।
जी, इन्होंने ये मेल हमें भेजा है ढाबा झलार श्री गंगानगर राजस्थान से। कहते हैं कि 17 अप्रैल को दिनभर में रजनीश कुमार ने बताया कि नोटबंदी नवंबर 2008 में हुई थी, कृपया सुधारें।
बिल्कुल, आपकी एकदम बात यह सही है महेंद्र सारण जी, ये गलती हुई थी। हमने इसको दोबारा सुना और रजनीश से बात भी हुई। ये मानवीय भूल जिसे कहते हैं वो थी, और हम बिना किसी लाग लपेट के इसके लिए क्षमा मांगते हैं।
तो अगला मेल हमें भेजा है गौतम दत्ता किशनगंज से। इन्होंने कहा है कि आदर्श राठौर की दुनिया जहान अच्छी लगी, जो केमिकल अटैक से संबंधित थी। देश के अंदर के परिदृश्य अत्यंत कष्ट देते हैं। हमें विश्वास है कि बीबीसी ईमानदारी से सारी रिपोर्टिंग करता है, और इनका एक सुझाव है कि बीबीसी पेज पर नमस्कार भारत और दिन भर के सारे रिपोर्टिंग को लिखा जाए।
लिखा जाए से इनका तात्पर्य शायद ये है कि जो रिपोर्ट्स हम लोग रेडियो पर प्रसारित करते हैं नमस्कार भारत और दिनभर कार्यक्रम में, उन पर जो खबरें बीबीसी ऑनलाइन पर भी छपें। लेकिन कई बार तो ये होती हैं, कई बार नहीं होती हैं। कोशिश की जाएगी कि रेडियो की रिपोर्ट्स उनका प्रिंट वर्जन जिसे कहते हैं वो भी छपे।
और ये है नथुराम सेन, गांव दल्लूसर तह सरदार शहर चूरू राजस्थान से। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के लंदन में दिए 2.5 घंटे के भाषण पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनके भाषण के सिवाय आलोचना करने की कुछ भी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई। आप बलात्कार, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर 15 दिनों तक हर कार्यक्रम में 10 मिनट तक समय देते हैं, तो कम से कम अपना एजेंडा आप सेट कीजिए। आगे लिखा है कि अपना एजेंडा सेट कर रखा है इन
ये
सब चीजों
आरोप
को
लगा रहे हैं
जी।
हाँ, नथुराम जी, दरअसल हमारी आलोचना है एक श्रोता की तरफ से, नथुराम सेन साहब की, तो इस आलोचना को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि आपको अगर ऐसा लगा है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और बताएंगे कि क्या होना चाहिए था और क्यों हम बलात्कार वाली खबरें जो हैं या जहां पर तनाव वाली खबरें हैं उनको हमको क्यों प्रसारित नहीं करना चाहिए, तो हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान होगा। अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं चारों तरफ जो हमें मजबूरन रिपोर्ट करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि वही पत्रकारिता का धर्म है
जी।
और वो धर्म हम निर्वाह करते हैं बहुत ईमानदारी के साथ। आप तो पुराने श्रोता हैं, आपको अंदाज़ा है ही है। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री ने लंदन में जो बात कही उसमें आपको कहाँ पे गड़बड़ी नज़र आई, उसमें कुछ भी हमें सकारात्मक नहीं लगा, ऐसी बात तो शायद नहीं है।
और ये मेल हमें भेजा है मुकेश कुमार ने, विलेज भीलखेड़ी सीहोर भारत से लिखा है इन्होंने। राजस्थान के संवाददाता नारायण बारेठ की प्रस्तुति इन्हें बहुत अच्छी लगी और कहते हैं कि उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे दीजिए।
नारायण बारेठ का मैं भी बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, जिस तरह से वो रेडियो रिपोर्ट्स करते हैं सुनने में आनंद आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी।
तो राजेश जी, फिर से एक मेल की बात करते हैं। 15 अप्रैल 2018 का कार्यक्रम बीबीसी दिनभर में आपने दीन बचाओ देश बचाओ पटना कार्यक्रम का समाचार अपने बीबीसी हिंदी रेडियो पर श्रोताओं को सुनवाया। बाकी किसी भी इंडियन समाचार चैनल और रेडियो ने ये समाचार नहीं दिया। इरफान उल्ला अंसारी साहब पूछते हैं।
कहाँ से लिखते हैं इरफान उल्ला अंसारी साहब, ये कुछ लिखा है इन्होंने?
नहीं, इन्होंने ये तो नहीं लिखा।
ये क्वेस्ट अलायंस संगठन में देख रहा हूँ उनकी, उसकी तरफ से है। अपना नाम पता, नाम लिखा है लेकिन पता नहीं लिखा है। लेकिन एहसानुल्लाह साहब, शुक्रिया आपका। हमारी यही कोशिश होती है कि जो हर जगह आपको मिलता है वो हमारे उस पर हमारा कम ध्यान होता है। बहुत सारी चीज़ें जो दूसरे मीडिया में नहीं होती हैं, हम वो कोशिश करते हैं कि आप तक पहुँचे। मसलन अंतर्राष्ट्रीय खबरें हमारे कार्यक्रमों में ज़्यादा होती हैं।
और ये मेल भेजा है मनीष कुमार भारद्वाज ने, जो कि एक शोध छात्र हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में, श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से। लिखते हैं कि आप यानी कि राजेश जोशी के द्वारा नयन सिंह पर प्रसारित विवेचना बहुत रोचक और अच्छी थी, साथ ही ज्ञानवर्धक भी थी। 14 अप्रैल को प्रसारित इंडिया बोल इतने कम समय में भी काफ़ी अच्छा प्रसारण उसका किया गया। और आगे लिखा है कि संदीप आदर्श जी और कुलदीप जी काफ़ी ही रोचक तरीके से समाचार का प्रसारण कर रहे हैं, अब ये भी बीबीसी के अच्छे प्रसारक हो गए हैं।
बिल्कुल, ऐसा जब नई नई शुरुआत करता है कोई भी इंसान तो उसमें थोड़ी हिचक, थोड़ी रुकावट लगती है, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक होती हैं। आपने नैन सिंह रावत की विवेचना जो उस पर हमने की थी वो पसंद आई आपको, तो ये श्रेय मुझे नहीं जाता है, डॉक्टर शेखर पाठक को जाता है, जिन्होंने किताब भी नैन सिंह रावत पे लिखी है। लेकिन अब शायद हमारे पास समय नहीं बचा, इसलिए चलते चलते श्रोताओं को मैं पता बता देता हूँ। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल का पता नोट कीजिए hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
चिट्ठियां इसी तरह लिखते रहिए और अब सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 11वें संस्करण में लगातार 3 मैच जीत चुकी पूर्व चैंपियन सनराइजर्स हैदराबाद आज मोहाली में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ होने वाले मुकाबले में जीत का चौका लगाने उतरेगी। हैदराबाद ने टूर्नामेंट में अब तक अपने सभी 3 मैचेस जीते हैं, तो वहीं पंजाब की टीम भी 3 मैचों में अब तक 2 मैच जीत चुकी है। पंजाब का शीर्ष क्रम अच्छे फॉर्म में है। कर्नाटक के लोकेश राहुल और करुण नायर ने पहले 3 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्रिस गेल के आने से टीम को और भी मजबूती मिली है। हैदराबाद के विजरत को रोकने की किंग्स 11 के सामने आज एक कठिन चुनौती जरूर होगी। क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा क्या कहते हैं आज के मैच को लेकर के?
देखिए, दोनों टीमों के कप्तान बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये दोनों टीम से देखेंगे, केन विलियमसन आउटस्टैंडिंग कैप्टन, रविचंद्रन अश्विन हैज बीन अ रेवोल्यूशन, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। दोनों के पास बोलिंग अटैक अच्छा है और वही उनकी ताकत है, तो मुझे लगता है बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड मैच होना चाहिए। सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा मैं थोड़ा सा भारी मानता हूँ, क्योंकि उनके पास अगर मैन टू मैन हम मार्किंग करें, लाइक फॉर लाइक में बोलिंग उनके पास थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है, और अमूमन मैं उस टीम के साथ जाना चाहता हूँ जिसके पास बोलिंग के ऑप्शन बहुत सारे हों और बहुत अच्छे हों, और वो काम सनराइजर्स हैदराबाद का है इस साल।
तो सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ पंजाब चाहेगा कि उसके मध्यक्रम के बैट्समैन युवराज सिंह और मयंक अग्रवाल फॉर्म में लौटे। तो दूसरी तरफ जिस तरह पंजाब की बैटिंग बहुत मजबूत है, तो उसी तरह हैदराबाद की गेंदबाजी भी काफी स्ट्रांग है। हैदराबाद के गेंदबाजों ने अपने पिछले 3 मुकाबलों में विपक्षी टीम को 150 के अंदर ही रोका है। राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, शाकिब अल हसन, संदीप शर्मा और सिद्धार्थ कौल ने अब तक शानदार गेंदबाजी की है, और ये मैच अब से थोड़ी ही देर में मोहाली के बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल जज ब्रजगोपाल हरकिशन लोया की मौत की एसआईटी से जांच करवाने की मांग को खारिज कर दिया है। मिगेल डियास कैनेल ने क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। वो इससे पहले उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे थे। राउल कास्ट्रो के राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वो अब देश के नए राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने आज औपचारिक तौर पर लंदन में हो रही राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक का उद्घाटन किया। बीते सप्ताह 10,000 नर्सों को नौकरी से बर्खास्त करने के बाद जिम्बाब्वे सरकार ने फिर से नर्सों की भर्तियां करनी शुरू कर दी हैं। बीते सप्ताह सोमवार को वेतन में सुधार की मांग को लेकर नर्सों ने हड़ताल की थी। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ दिन भर की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान तकनीकी सहयोग दिया कपिल देव सिंह ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया भूमिका राय ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।